नमस्कार भारत, आज है 27 जनवरी, दिन शुक्रवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। अमेरिका मेक्सिको सीमा पर दीवार को लेकर दोनों देशों में बढ़ा तनाव। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मेक्सिको से अमेरिका आने वाली चीजों पर टैक्स लगाकर जुटाएंगे दीवार बनाने का खर्च।
The President of Mexico and myself have agreed to cancel our planned meeting scheduled.
गुजरात के समुद्र में मछली पकड़ने गए 30 से ज्यादा मछुआरों को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ा। होगी एक खास रिपोर्ट बुरहान वानी के गांव की उस छात्रा पर जो 12वीं की परीक्षा में अव्वल आई है।
टर्मोइल जो हुआ हमारे कश्मीर में, ऑल्दो उसकी वजह से इफेक्ट पड़ा, जहनी दबाव भी था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे अपनी स्टडीज पे फोकस करना है।
होगी फिल्म रईस और काबिल की समीक्षा भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार अमर शर्मा से। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मेक्सिको से अमेरिका में आयात किए जाने वाले सामान पर टैक्स लगाने पर विचार कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच उनकी दीवार बनाने की योजना के लिए पैसे जमा हो सकें। इस ऐलान से दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध और बिगड़ सकते हैं। इस योजना की घोषणा मेक्सिको के राष्ट्रपति एनरिक पेना नियटो के अगले हफ्ते वाशिंगटन में ट्रंप के साथ होने वाली बैठक को रद्द करने की बात की गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने पेना नियटो के दौरा रद्द करने की निंदा की और कहा कि मेक्सिको के राष्ट्रपति से मुलाकात का कोई फायदा नहीं अगर वो अमेरिका के साथ सम्मान से पेश नहीं आते और दोनों देशों की सीमा पर दीवार बनाने का खर्च नहीं देते। मेक्सिको ने कहा है कि वे ट्रंप की मांग पर सीमा पर दीवार बनाने का खर्च नहीं देंगे, जिसका मकसद अवैध प्रवासन रोकना है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा है कि ये उचित समय है जब ब्रिटेन और अमरीका अपने खास संबंधों को फिर से जीवंत बनाए। मे अमरीका दौरे पर हैं और फिलाडेल्फिया में रिपब्लिकन सांसदों को संबोधित कर रही थी। वे पहली विदेशी राजनेता होंगी जो राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करने वाली हैं। मे ने वहां उपस्थित सांसदों से कहा कि अब समय आ गया है कि ब्रिटेन और अमरीका ये प्रतिज्ञा करे कि आधुनिक दुनिया में इसकी अगुवाई करने की अपनी जिम्मेदारी को निभाए। उन्होंने कहा,
As we rediscover our confidence together, as you renew your nation, just as we renew ours,
हम अपने आत्मविश्वास को एक साथ ढूंढें, जैसे आप अपने देश को नया बना रहे हैं और अपने देश को हम। हमारे पास ये मौका है और निश्चित ही इस दौर में उन विशेष संबंधों को फिर से नया बनाने की जिम्मेदारी भी है। हमारे पास फिर से एक साथ नेतृत्व करने का मौका है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे के शब्द। मानवाधिकारों पर यूरोपीय अदालत का कहना है कि 5,300 से ज़्यादा तुर्की के लोगों ने उनके पास शिकायत दर्ज कराई है। अदालत का कहना है कि पिछले साल जुलाई में तुर्की में तख्तापलट की नाकाम कोशिश के बाद सरकार ने कड़ी कार्रवाई चालू की है, जिसके बाद उन्हें ही शिकायतें मिली हैं। अदालत के अध्यक्ष गुइडो राइमोंडिनो ने कहा कि यदि तुर्की ने शिकायत के समाधान के लिए पहले अपनी अदालतों में कोशिश नहीं की तो उन्हें डर है कि उनकी अदालत इसके भार से दब जाएगी। इससे पहले तुर्की ने ग्रीस की सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर नाराजगी जताई जिसमें तुर्की के 8 सैनिकों के तुर्की प्रत्यर्पण किए जाने पर रोक लगा दी गई। ये सैनिक तख्तापलट की नाकाम कोशिश के बाद तुर्की से भागकर ग्रीस चले गए थे। सैनिकों के वकील क्रिस्टोस माइलिनो पाउलस ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, यह यूरोपीय मूल्यों और ग्रीक न्याय की एक बड़ी जीत है। सिर्फ उन 8 अफसरों की जिंदगी खतरे में नहीं थी बल्कि ग्रीस की न्याय व्यवस्था भी की प्रतिष्ठा भी खतरे में थी। ये नए वकीलों के लिए एक सबक है। वकील क्रिस्टोस के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान की मीडिया नियामक संस्था पेमरा ने एक हाई प्रोफाइल टीवी होस्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। धार्मिक कार्यक्रम के प्रस्तोता आमिर लियाकत हुसैन पर आरोप है कि वो अपने कार्यक्रम में ऐसी घृणा फैलाने वाली बातें करते हैं जिससे जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। आमिर लियाकत हुसैन ने 5 लापता उदारवादी एक्टिविस्टों और उनके समर्थकों पर ईश निंदा के आरोप लगाए थे। ऐसे आरोप पाकिस्तान में हत्याओं को उकसा सकते हैं जहां ईश निंदा एक अपराध है और उसके लिए मौत की सजा का प्रावधान है। लियाकत हुसैन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। द गाम्बिया के नए राष्ट्रपति एडम बैरो सेनेगल से अपने देश वापस लौट आए हैं। सेनेगल ने बैरो को सुरक्षा दी थी। बैरो के लौटने पर राजनयिकों और अधिकारियों ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया जहां उनके सम्मान में रेड कारपेट बिछाया गया था और क्षेत्रीय सेना संगठन इकोवास के लड़ाकू विमान आकाश में उड़ान भर रहे थे। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। अमेरिका और मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने का मुद्दा लगातार गंभीर रूप लेता जा रहा है। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेक्सिको से अवैध अप्रवासियों को रोकने के लिए वो सीमा पर दीवार बनाएंगे और उसमें होने वाला खर्च भी मेक्सिको से ही लेंगे। इस घोषणा पर मेक्सिको नाराज हुआ और उसने कह दिया कि वो दीवार बनाने का खर्च नहीं उठाएगा। कूटनीतिक पारा और गर्माया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब अमेरिका की बात नहीं माननी तो मेक्सिको के राष्ट्रपति अगले हफ्ते वॉशिंगटन आकर क्या बात करेंगे। मेक्सिको भी नाराज हुआ और राष्ट्रपति एनरिक पेना नियटो ने कह दिया कि वो अमेरिका जाएंगे ही नहीं। मेक्सिको के इस दो टूक जवाब से डोनाल्ड ट्रंप फिर नाराज हुए और आज उन्होंने कह दिया कि अब दीवार बनाने का खर्च मेक्सिको से आयात होने वाली चीजों पर 20% तक टैक्स लगाकर जुटाया जाएगा। पूरी जानकारी अमर शर्मा से।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने मेक्सिको को यह साफ तौर पर समझा दिया है कि मेक्सिको और अमरीका की सीमा पर बनने वाली दीवार का खर्चा अमरीकी लोग नहीं उठाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप फिलाडेल्फिया में रिपब्लिकन नेताओं को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि मेक्सिको के साथ बैठक का कोई फायदा नहीं। उन्होंने कहा,
द प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको एंड मायसेल्फ हैव अग्रीड टू कैंसिल आवर प्लान्ड मीटिंग शेड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट वीक।
मेक्सिको के राष्ट्रपति और मैं अगले महीने होने वाली हमारी निर्धारित बैठक को रद्द करने पर सहमत हो गए हैं। जब तक कि मेक्सिको अमेरिका के साथ उचित सम्मान के साथ पेश नहीं आता, ऐसी बैठक से कोई फायदा नहीं होने वाला और मैं एक अलग रास्ता अख्तियार करने जा रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। इससे पहले बुधवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने दीवार बनाने के कार्यकारी आदेश पर दस्तखत किया था, जिसके बाद मेक्सिको के राष्ट्रपति एनरिक पेना नियटो ने अगले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप से वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात का कार्यक्रम रद्द कर दिया था, जिसकी डोनाल्ड ट्रंप ने निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि सीमा पर दीवार बनाने का अरबों डॉलर का खर्च अमरीका मेक्सिको से वसूलेगा, जिसका मेक्सिको ने विरोध किया था। 3200 किलोमीटर लंबी दीवार का खर्चा मेक्सिको से लेना डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी अभियान के प्रमुख वादों में से एक था। अमरीकी सीनेट के रिपब्लिकन सदस्यों का कहना है कि अमरीकी संसद ट्रंप की इस योजना को आगे बढ़ाएगी, जिस पर 12 से 15 अरब डॉलर का खर्च आने वाला है। ट्रंप ने कल सुबह सोशल मीडिया ट्विटर पर लिखा था कि अगर मेक्सिको दीवार का खर्च नहीं उठाना चाहता तो अच्छा ये रहेगा कि वो आगामी बैठक स्थगित कर दे। जिसके बाद मेक्सिको के राष्ट्रपति पेना नियटो ने कहा कि वे 31 जनवरी का अमरीका दौरा रद्द कर रहे हैं। दोनों देशों के संबंधों पर असर डालने वाली ये बयानबाजी यहीं नहीं रुकी। डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा है कि वो मेक्सिको से अमेरिका में आयात किए जाने वाले सामानों पर टैक्स लगाने पर विचार कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता शॉन स्पाइसर ने संवाददाताओं से कहा है कि मेक्सिको से आने वाले सामान पर 20% कर लगाने से करीब 10 अरब डॉलर का राजस्व हर साल इकट्ठा होगा और आयात कर से दीवार का खर्च आसानी से निकल आएगा। वहीं मेक्सिको के एक पूर्व राष्ट्रपति विंसेंट फॉक्स ने कहा है कि मेक्सिको इसका जवाब देगा और खुद भी अमेरिका से आयात किए जाने वाले सामानों पर टैक्स लगाएगा। उन्होंने कहा,
What we buy from United States accounts for 10 million US direct jobs.
अमेरिका से हम जो सामान खरीदते हैं उससे 1 करोड़ अमेरिकी नागरिकों को नौकरियां मिलती हैं, और अगर वो मेक्सिको से अमेरिका भेजे जाने वाले 40 अरब डॉलर मूल्य के कारों पर टैक्स लगाएंगे तो हम अमेरिका से मेक्सिको में भेजे जाने वाले सामानों पर टैक्स लगाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति विंसेंट फॉक्स के शब्द। बुधवार को दीवार बनाने के आदेश पर दस्तखत करते समय डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर संकट के हालात हैं।
ब्यौरा सुना रहे थे अमर शर्मा। गुरुवार देर शाम गुजरात के पोरबंदर से खबर आई कि समुद्र में मछली पकड़ने गए कुछ मछुआरों को पाकिस्तान के नौसैनिकों ने पकड़ लिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने खबर दी है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने 6 नावों में सवार 32 मछुआरों को अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि गुजरात फिशरीज सेंट्रल कोऑपरेटिव एसोसिएशन के चेयरमैन विलजी मसानी का कहना है कि 10 नावें पकड़ी गई हैं जिन पर 60 के करीब मछुआरे सवार थे। उनसे बात की हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने।
मेरे पास ये जानकारी है कि 10 बोटों के साथ 60 हमारे जो फिशरमैन है उनको कैप्चर किया हुआ है और वो जखौ से जो हमारी बॉर्डर पड़ती है नो फिशिंग जोन वाली, वहां से उनको पकड़ लिया गया है।
ये लोग क्या जो सीमा है उससे दूर चले गए थे?
सीमा के पास नो फिशिंग जोन डिक्लेयर किया हुआ है बहुत सालों से, वहाँ फिशिंग करते रहते हैं, थोड़ा इधर उधर भी हो जाते हैं। वो फिशिंग के दरमियान जब बोट चलती है तो वो ख्याल नहीं रहता है आगे पीछे होने में, तो 5-7 किलोमीटर आगे पीछे हो भी सकता है उसमें और पकड़ लिए गए होंगे।
कुल कितने लोग पकड़े गए हैं?
60 लोग पकड़े गए ऐसा मुझे कहा गया है।
कुछ समाचार एजेंसियों में सिर्फ 36 लोगों की बात कही गई है।
60 लोगों के लिए बताया क्योंकि 10 बोट है, हर बोट में 6-7 क्रू मेंबर होते हैं।
तो अभी आप लोगों ने उनको छुड़ाने के लिए क्या कोई कोशिश शुरू की है?
वो जानकारी में लगे हुए है कि कौन सी बोट है और कौन कौन नाम के फिशरमैन को पकड़ा गया है वहाँ पर, वो जानकारी हम इकट्ठी कर रहे हैं। उसके बाद सारी डिटेल्स हम गवर्नमेंट के पास रखेंगे।
अभी सरकार को इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है?
नहीं, अभी तक कोई नाम की सूचना हमारे पास आई नहीं। बस अभी संख्या के बारे में बताया गया कि इतनी 10 बोट है और 60 फिशरमैन है।
ये लोग आज ही निकले थे?
बहुत सारे आज ही निकले थे, कल निकले थे मतलब। और ये आपको पता है कि ये जो जखौ पर हमारी जो कच्छ के समुद्र में पाकिस्तान के साथ जो सीमा पड़ती है, वहाँ बहुत ही नजदीक ये गांव है जखौ। जखौ उसके बाहर दरिया में समुद्र में फिशिंग के लिए लोग निकलते हैं ओखा और जखौ से। और गुजरात के जो कोटड़ा वणकबारा दीव दमन का जो एरिया है, वहाँ से भी लोग ओखा कैंप करके फिशिंग करते हैं जखौ के एरिया में। मॉनसून के टाइम वो वहाँ से अपने अपने घर चले आते हैं और सीजन के टाइम पर 6-8 महीना तक वहाँ फिशिंग करने के लिए जाते हैं ओखा में।
ये थे गुजरात फिशरीज सेंट्रल कोऑपरेटिव एसोसिएशन के चेयरमैन विलजी मसानी। 40 सदस्यों वाले गोवा विधानसभा चुनाव के लिए 4 फरवरी को वोटिंग होनी है। राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये नोटबंदी का असर है या फिर बदलते राजनीतिक परिवेश का कि इस बार बड़ी रैलियों की बजाय नेता घर घर जाकर ही वोटरों से मिल रहे हैं। यहाँ फिलहाल बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में है। हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने गोवा में स्थानीय पत्रकार संदेश प्रभुदेसाई से बात की और पूछा कि वहाँ चुनावी फिजा कैसी नजर आ रही है।
पहले पब्लिक मीटिंग्स जो होते थे उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता था, लेकिन अभी तो घर घर जाके प्रचार करना ही तो सब लोगों ने शुरू किया है। और कोई भी उम्मीदवार अभी तुम्हें कहीं नहीं मिलता, घूमते हुए मिल रहा है। और एक चौतरफा मुकाबला गोवा में हो रहा है, ऐसा पहली बार जो कभी पहले इतना नहीं था। तो चौतरफी मुकाबला में ये तो है, जो सत्ता में है वो भाजपा भारतीय जनता पार्टी है और उससे पहले भी जो सत्ता में बहुत बरस वो कांग्रेस भी है, लेकिन ये चौतरफा मुकाबले में भाजपा के विरोध में ही, यानी भाजपा की जो मत है वो मत फोड़ने के लिए जो है वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उनके एक बगावती नेता है सुभाष वेलिंगकर जो संघ चालक थे वहाँ, उन्होंने महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और एक यहाँ की रीजनल पार्टी है उन पार्टी से समझौता किया है और ये भाजपा के विरोध में खड़ी है। और दूसरे बाजू से जो कांग्रेस है, कांग्रेस के विरोध में खड़ी है नई आई गोवा में दिल्ली से, वो है आम आदमी पार्टी। सो ऐसा चौतरफा मुकाबला हो रहा है, उससे भी और पार्टियां हैं, गोवा फॉरवर्ड है जिसके 4 उम्मीदवार है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की उनके थोड़े हैं।
इस बार के चुनाव में गोवा के उम्मीदवारों के सामने या गोवा की जनता के लिए प्रमुख मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है वहाँ पर?
एक तो मुद्दा है जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तो भ्रष्टाचार का मुद्दा तो हर बार आता है, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी आई तो उन्होंने भी भ्रष्टाचार का मुद्दा लगाया। और भारतीय जनता पार्टी जो पहली बार 2012 में जो चुनाव हुए थे उसके बाद जो आए थे वो भी भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके आए थे, लेकिन अभी उनके ऊपर आरोप किए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के। तो बहुत से जो इश्यूज है उसके ऊपर यू टर्न किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। एक तो है कैजिनो का, यहाँ गोवा में फ्लोटिंग कैजिनोस है, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले बोला था कि हे हम सब मांडवी जो नदी है वहां से वो अंदर समंदर में लेके जाएंगे, लेकिन अभी तो उतने ही सब है और वो कैजिनो की साइज बढ़ रही है, लेकिन वो तो नहीं जा रहे और नहीं गए 5 बरस में। तो ये मुद्दा विरोधी जो पक्ष है उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है। और आम आदमी पार्टी ने तो किया है कि वो सत्ता में आए तो वो कैजिनो बंद कर देंगे। और दूसरा मुद्दा जो है उसके सिवाय जो वो जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो बनाया यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने और बहुत से इंडस्ट्रीज उद्योग यहाँ से अंदर लाए, तो उसके ऊपर बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी, बहुत विवाद हुए थे, तो ये भी मुद्दे उठ रहे हैं बड़ी बहुत बड़ी ये करके। और दूसरा और एक था मुद्दा जो प्राथमिक स्तर पर शाला में, पाठशाला में प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी में जो पढ़ाते हैं वो अंग्रेजी माध्यम की जो प्राथमिक शाला है उनको अनुदान देने से विरोध करने के लिए ये आरएसएस के लोग बगावत करके भाजपा से बाहर आए थे, तो उन्होंने ये मुद्दा बनाया है बहुत बड़ा कि हम सत्ता में आए तो ये जो अनुदान या ग्रांट्स जो मिल रहे हैं अंग्रेजी शाला को या प्राथमिक स्तर पर वो हम कैंसिल कर देंगे, स्क्रैप कर देंगे।
संदेश जी, एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाद सीधे इतनी दूर जाकर के चुनाव लड़ने की सोची है, हालांकि वो पंजाब में भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से उनके 4 सांसद भी आते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये उनका गोवा में पहला चुनाव होगा, उसके प्रति किस तरह की भावना आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों में?
जी, दो बातें हैं। एक तो आम आदमी पार्टी का ये पहला विधानसभा चुनाव है, लेकिन इससे पहले 2014 में जो लोकसभा थी तब आम आदमी पार्टी यहाँ आ चुकी थी और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जितने भी लोग थे वो लोग उसमें ज्वाइन हुए थे और तब से आम आदमी पार्टी का ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि कांग्रेस के साथ यहाँ गोवा में जो ईसाई लोग हैं, माइनॉरिटीज हैं, जो अभी 25% जो है वो पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, तो वो अभी उनमें उनमें दो तट हुए हैं और बहुत से लोग वहां के माइनॉरिटीज के हैं जो वो आम आदमी के पक्ष में गए हैं। तो इसके लिए आम आदमी पार्टी का और बाकी जो यंग जो है, युवक जो है, वो युवक भी बहुत से यहाँ आम आदमी पार्टी में आ चुके हैं, तो इससे लिए आम आदमी पार्टी अभी बाकी पार्टियों के बराबरी है और 40 यहाँ टोटल सीट है, वो 40 सीटों से 39 सीट जो है वो आम आदमी लड़ रही है।
ये थे गोवा में स्थानीय पत्रकार संदेश प्रभुदेसाई। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए भी 4 फरवरी को ही मतदान होना है। पंजाब में 2007 से शिरोमणि अकाली दल की सरकार है और कांग्रेस दोबारा सत्ता में आने के लिए पूरा दमखम लगा रही है, लेकिन केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। पंजाब चुनाव में लंबी सीट पर सबकी नजर है, क्योंकि यहां से राज्य के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, सत्ता में वापसी का दावा कर रहे कांग्रेस के अमरिंदर सिंह भी यहीं से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुनिए सलमान रावी की रिपोर्ट।
अपने हलके दी उन्नति तरक्की ते खुशहाली।
यह है पंजाब के बठिंडे के पास लंबी विधानसभा सीट, जहां चुनाव का प्रचार धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है।
ते हरमन प्यारे नेक दिल अते मेहनती इंसान,
सबकी निगाहें इस सीट पर हैं, क्योंकि यहां से पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल 5वीं बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज आसमान पर भले ही बादल छाए हुए हों, मगर जमीन पर भी ये बादलों का ही इलाका है। मगर इस बार इस सीट पर रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस सीट से अपना पर्चा भरा है। आम आदमी पार्टी ने भी यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आम आदमी पार्टी ने पूर्व पत्रकार और दिल्ली के विधायक जरनैल सिंह को इस सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। वैसे सभी पार्टियों के चुनावी दफ्तरों पर सन्नाटा है, क्योंकि अभी मतदान के लिए काफी दिन बचे हैं। लंबी में सब कुछ आखिर वक्त में होता है, ये कहना है शिरोमणि अकाली दल के चुनावी कार्यालय में मौजूद कार्यकर्ताओं का। शायद यही वजह है कि अभी तक बड़े बादल ने यहाँ अपना प्रचार अभियान पूरी तरह से शुरू भी नहीं किया है।
इस हल्के में तो बादल साहब कह रहे हैं राहुल गांधी आ जाए तो मैं फिर भी नहीं हारूंगा उससे। ये तो चीज क्या है, ये दूसरे तीसरे होगा और दूसरे किस हल्के में होगा, लंबी में नहीं होगा।
कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पर्चा भरने के बाद से लंबी नहीं आए हैं। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो पंजाब के दूसरे हिस्सों में प्रचार की कमान संभाले हुए हैं।
पहला पर्चा भरने ले आए सी जी,
बस पर्चा भरने के बाद
हाँ, उसके बाद हुण प्रोग्राम बने हैं जी।
शिरोमणि अकाली दल के नेता और लंबी में पार्टी की प्रचार की कमान संभालने वाले अंग्रेज सिंह कहते हैं कि लंबी प्रकाश सिंह बादल की पक्की सीट है। मगर शिरोमणि अकाली दल के चुनावी कार्यालय से कुछ ही दूर चाय की दुकान पर मौजूद लंबी के नौजवान कुछ और ही कहते हैं।
नौकरियां जी 100 दे विचो आपा कह दिए भी 50% मिलिया ते 50% जेड़े बेरोजगार करदे गरीबां दे घरों भी ढए ते एक कमरे च छी छी जने रहंदे गरीब हैं ब्याहन वाले होए पए सारे।
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लंबी से बड़े बादल के खिलाफ पर्चा भरकर पूरी लड़ाई की दिशा को ही मोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे पूर्व सैनिक जीवन सिंह फौजी कहते हैं,
लंबी की बुरी हालत है सर, इतने सूजमी को जूझमी बोलते हैं लोग, चाकू को काचू, लफाफे को फलाफा, ये पढ़ाई है बादल के इलाके, इतने पढ़े लिखे लोग हैं।
मगर आम आदमी पार्टी के चुनावी प्रचार अभियान के बावजूद शिरोमणि अकाली दल के खेमे में अगर चिंता भी है तो वो उससे सामने जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। सलमान रावी, BBC, लांबी गांव, पंजाब।
और अब वक्त है अखबारों की समीक्षा का। वैसे तो आज कई अखबार नहीं छपते, लेकिन जो भी अखबार छपे हैं उनकी समीक्षा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अमर शर्मा। जी अमर
जी, आज तमाम अखबारों में जैसा आप बता रहे हैं कम अखबार छपे हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक कोई हेडलाइन नहीं है आज, सबसे खास बात है, सिर्फ एक बड़ी सी तस्वीर छपी है 5 कॉलम में और इसमें सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं और नीचे लिखा है द रिपब्लिक डे, द पब्लिक डे, मतलब गणतंत्र दिवस की जगह लिखा है सिर्फ लोगों का दिन। एक बहुत अहम खबर है जो कई अखबारों ने आज इसको छापा है, जगह दी अपने पहले पन्ने पर। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर है और कई अखबारों की है कि यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे मेघालय के राज्यपाल वी शंगमुनाथन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। अखबार के मुताबिक शिलोंग में राजभवन के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है कि राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न के आरोप थे और उन्होंने इस संवैधानिक पद से इस्तीफा दे दिया है। 67 वर्षीय शंगमुनाथन ने 20 मई 2015 को मेघालय के राज्यपाल का पद संभाला था और वे आरएसएस के कार्यकर्ता थे। और यहाँ बहुत गौरतलब बात है जानने लायक कि बुधवार को शिलोंग में राजभवन में काम करने वाले अधिकारियों से चपरासी तक 80 कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन और प्रणब मुखर्जी को चिट्ठी लिखी थी और गृह मंत्रालय को भी, जिसमें उन्होंने राज्यपाल को तत्काल हटाने की मांग की थी। कर्मचारियों का आरोप था, जो उन्होंने चिट्ठी में लिखा था, कि राज्यपाल की हरकतों से राजभवन की प्रतिष्ठा और राजभवन के कर्मचारियों की भावना आहत हुई है और इन हरकतों से गंभीर रूप से राजभवन की प्रतिष्ठा की अनदेखी की गई है और इसे एक युवा महिलाओं के क्लब में तब्दील कर दिया गया था, ऐसा इन्होंने कहा है। एक आपको और खबर बताएं कि कल बारिश हुई है दिल्ली में, जिससे और बहुत सबसे ज़्यादा अखबार ने लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया ने कि 100 सालों में 26 जनवरी को हुई हुई सबसे ज़्यादा बारिश है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अमर शर्मा अखबारों की समीक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी का नाम आपको याद होगा, जो भारत प्रशासित कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे। उसके बाद से कश्मीर घाटी लंबे समय तक अशांत रही थी और बच्चों की पढ़ाई लिखाई सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी, क्योंकि 6 महीने तक कश्मीर घाटी के स्कूल कॉलेज बंद रहे थे। लेकिन ऐसे विपरीत हालात के बीच बुरहान वानी के गांव डाडसर की 17 साल की छात्रा शाहिरा ने 12वीं की परीक्षा में पहला स्थान हासिल कर एक नई मिसाल कायम की है। उन्हें 500 अंकों की परीक्षा में 498 नंबर मिले हैं। सुनिए श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
शाहिरा उसी इलाके की रहने वाली हैं जहां के बुरहान वानी थे। बुरहान वानी चरमपंथी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर थे, जो बीते 8 जुलाई को सुरक्षा बलों के साथ एक झड़प में मारे गए। बुरहान की मौत के बाद कश्मीर में करीब 6 माह तक भारत विरोधी प्रदर्शन जारी रहे और कश्मीर में 6 महीनों तक कर्फ्यू और हड़ताल की वजह से सब कुछ ठप रहा। 6 महीनों तक शाहिरा न स्कूल जा पाईं और न ही ट्यूशन सेंटर। कश्मीर के तमाम स्कूल 6 महीनों तक बंद थे। बीते 6 महीनों के खराब हालात के बावजूद शाहिरा ने अपना ध्यान सिर्फ शिक्षा पर दिया। उन्होंने कहा,
टर्मोइल जो हुआ हमारे कश्मीर में, ऑल दो उसकी वजह से इफेक्ट पड़ा, जहनी दबाव भी था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे अपनी स्टडीज पे फोकस करना है, तो मैंने बस अपनी स्टडीज पे फोकस किया कम्प्लीटली और पूरी मेहनत की ताकि मैं एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकूं।
शाहिरा ने अपनी कामयाबी के लिए अपने परिवार और अपने शिक्षकों का शुक्रिया अदा किया। वो कहती हैं,
मेरे टीचर जिन्होंने मुझे इन हालातों में बाहर निकाला, इनसे इफेक्ट नहीं होने दिया, मेरा सिलेबस कंप्लीट करवाया ताकि मैं एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा कर सकूं। उनका साथ था, मेरे साथ मेरे पेरेंट्स का साथ था।
दक्षिणी कश्मीर का डाडसर गांव चरमपंथियों का समर्थन वाला इलाका समझा जाता है। आज तक इस इलाके के दर्जनों चरमपंथी सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में मारे जा चुके हैं। शाहिरा को अपनी कामयाबी की खबर किसी ने नहीं दी, बल्कि वो खुद अपनी परीक्षा का नतीजा देखने गईं। शाहिरा ने वर्ष 2014 में 10वीं की परीक्षा में 2री पोजीशन हासिल की थी। शाहिरा की कामयाबी पर उनके पिता शमीम अहमद इंतहाई खुश हैं।
अल्लाह का फजल है कि उसने 2016 का जो सेशन था 12th का, उसमें फर्स्ट पोजीशन लाई है।
शाहिरा की माँ तस्लीमा कहती हैं कि इन हालात के बारे में सिर्फ उनका दिल ही जानता है कि किस तरह उनकी बेटी ने तालीम के लिए मुश्किलात का सामना किया। शाहिरा अभी श्रीनगर में MBBS परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। माजिद जहांगीर, BBC हिंदी, श्रीनगर।
इस हफ्ते शाहरुख खान की फिल्म रईस और ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल रिलीज हुई। सुनते हैं फिल्मों की समीक्षा इंदु पांडे और अर्णव बैनर्जी से।
अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता।
आदमी का खुद पे भरोसा उसकी ताकत होती है। तुम और मैं हम कमजोर नहीं।
अब तो फिल्में फ्राइडे को रिलीज होती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ हफ्ते ऐसे होते हैं जब फ्राइडे की फिल्म पहले आ जाती है, और ये हफ्ता ऐसा ही था। और हमारे साथ है अर्णव बैनर्जी, जो बताएंगे कि रईस कितनी काबिल है।
रईस जाहिर है शाहरुख खान की फिल्म है, तो काबिल तो नहीं भी हो तब भी लोग देखने तो जाएंगी। बहरहाल राहुल ढोलकिया और शाहरुख का कॉम्बिनेशन थोड़ा अनोखा है। यहाँ पे शाहरुख एक गैंगस्टर बने हैं, यानी बहुत अच्छे दिल के हैं, बहुत गरीबों का ध्यान रखते हैं, औरतों का और बच्चों का सबकी इज्जत करते हैं, तो एक अलग किस्म की बनाने की कोशिश करी है फिल्म।
और जो दोनों फिल्मों को लेकर के टकराव की बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रही थी।
देखिए रईस एक अलग जॉनर की फिल्म है और काबिल अलग है। जाहिर है दोनों में सुपरस्टार हैं, बल्कि रईस में जो शाहरुख का रोल है वो एक गैंगस्टर का है, लेकिन वो साधारण है, मतलब लार्जर देन लाइफ बनाने की कोशिश नहीं करी है। तो प्रॉब्लम है राहुल ढोलकिया के साथ, जो कि बहुत ही सेंसिटिव फिल्म मेकर हैं। उन्होंने शायद टिपिकल बॉलीवुड फिल्म बनाने से इनकार कर दिया होगा, कहीं कहीं शाहरुख को एक बहुत लार्जर देन लाइफ इमेज देने की कोशिश की है, लेकिन पूरी तरह से वो एक बहुत सामंजस्य बनाने की कोशिश करी है उन्होंने, कि बहुत ज़्यादा दिखाए ना कुछ वायलेंस या मेन स्ट्रीम या कमर्शियल जो एंगल होता है हमारी फिल्मों में, उस तरह से दिखाने की कोशिश ना की जाए। लेकिन इसको संभालने के लिए उन्होंने शायद कई जगह कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो इसीलिए रईस एक पूरी तरह से ना तो एक मेन स्ट्रीम फिल्म है, ना ही कोई आर्ट फिल्म या पैरेलल फिल्म कही जा सकती है।
अर्णव, इस फिल्म का एक किरदार है जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, और वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी।
नवाजुद्दीन आईपीएस ऑफिसर बने हैं, और उनको उनका एक कैट एंड माउस का एक सिचुएशन है, जहाँ पे वो शाहरुख के पीछे भागते रहते हैं, तो उनकी एक्टिंग बहुत सहज है, और कहीं कहीं तो वो बाजी मार ले गए हैं मुझे लगता है। फिर भी शाहरुख खान ने कोशिश करी है, और शाहरुख खान कई ऐसी फिल्मों में आते हैं जो लीक से हटके होती हैं थोड़ी सी, जैसे चक दे आई थी, और यहाँ पे वो टिपिकल करण जौहर या यश चोपड़ा की फिल्म में जैसे रोमांटिक हीरो बन के आते हैं वैसे नहीं है।
तो इसको नंबर कितने देंगे आप?
मैं रईस को 5 में से 3 दूंगा।
चलिए अब बात करते हैं काबिल की। तो काबिल कितनी काबिल है?
काबिल में बहुत काबिल एक्टर्स हैं, ऋतिक रोशन के साथ यामी गौतम है, दोनों अच्छे एक्टर्स हैं। ऋतिक रोशन जब भी इस तरह की फिल्में करते हैं तो वो काफ़ी उसमें जान लगा देते हैं। दोनों नेत्रहीन हैं, विजुअली चैलेंज्ड हैं। इंटरवल तक तो अच्छा है, क्योंकि दोनों ये सोच के एक ब्लाइंड डेट पर जाते हैं कि हमें शादी तो नहीं करनी है, लेकिन जब वो मिलते हैं तो उनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो शादी कर लेते हैं। इसी बीच एक गुंडा है जो रोहित रॉय बने हैं, रोहित रॉय यामी गौतम को अकेला पाकर रेप कर देते हैं। इसके बाद जो फिल्म होती है एक बहुत इम्प्रॉबेबल बन के रह जाती है, यानी ऋतिक रोशन नेत्रहीन होते हुए एक तो पूरे सुराग ढूंढ के लाते हैं और अकेले सब काम करते हैं। आजकल की दुनिया में ये बहुत कष्ट होता है देखते हुए, कि एक अच्छी कहानी होते हुए भी एक फिल्म को एक टिपिकल 70s की फिल्म बना दिया गया है। मुझे लगता है कि कुछ अच्छी बनते बनते फिल्म काबिल जो है बेकाबिल हो जाती है।
तो अर्णव, आपने दोनों फिल्में देखी, कौन सी फिल्म में ज्यादा भीड़ थी हॉल के अंदर?
रईस में ज्यादा भीड़ थी, जाहिर है वो शाहरुख खान की फिल्म थी, तो शाहरुख खान को देखने लोग ज़्यादा आते हैं। काबिल के प्रोमोस से पता चल जाता है कि वो नेत्रहीन है, शायद इस वजह से कई लोग देखेंगे लेकिन बाद में देखेंगे। मैं काबिल को 5 में से 2 दूंगा।
थैंक यू अर्णव।
थैंक यू।
और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मेक्सिको से अमेरिका में आयात किए जाने वाले सामान पर टैक्स लगाने पर विचार कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच उनकी दीवार बनाने की योजना के लिए पैसे जमा हो सकें। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा है कि अब समय आ गया है कि ब्रिटेन और अमरीका ये प्रतिज्ञा करें कि आधुनिक दुनिया में इसकी अगुवाई करने की अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। पाकिस्तान की मीडिया नियामक संस्था पेमरा ने एक हाई प्रोफाइल टीवी होस्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। धार्मिक कार्यक्रम के प्रस्तोता आमिर लियाकत हुसैन पर आरोप है कि वे अपने कार्यक्रम में ऐसी घृणा करने वाली बातें करते हैं जिससे जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार भारत की सभा भी यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात 7:30 बजे दिन भर में होगी। कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया अजित सारथी ने। तो अब अमरीश द्विवेदी को दीजिए अनुमति, और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। नमस्कार।